जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 5, अध्याय का नाम है साक्षी गोपाल की लीलाएं और प्यार संख्या 137 से 139 तक तात्पर्य नहीं है, 140वां हम लोग साथ साथ पढ़ेंगे। तो 137वां महातेजोमय दोहे कमल नयन दुहार भावावेश दोहे चंद्र बदन। भक्तों ने देखा कि चैतन्य महाप्रभु तथा गोपाल दोनों ही दीप्तिमान तेज से युक्त थे और दोनों के नेत्र कमल जैसे थे, दोनों ही भाव में मग्न थे और उनके मुखमंडल पूर्ण चंद्रमा सदृश थे। तो चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों के साथ रेमुणा में साक्षी गोपाल के मंदिर में है ना। हाँ क्षमा करना, हाँ ठीक है, साक्षी गोपाल ने रेमुणा में गोपीनाथ जी के मंदिर में है, शिरचूरा गोपीनाथ के मंदिर में है और वहाँ पर देख रहे हैं। अच्छा तो फिर कैसे गोपाल, यहाँ गोपाल का नाम कैसे आ गया? अच्छा तो साक्षी गोपाल के मंदिर में हैं, वहाँ पर हैं। हाँ तो रेमुणा नहीं, कटक में है ना, चैतन्य महाप्रभु कटक में है और साक्षी गोपाल के मंदिर में, ठीक है। हाँ अपने भक्तों के साथ में कटक में साक्षी गोपाल के मंदिर में है और चैतन्य महाप्रभु दर्शन कर रहे हैं साक्षी गोपाल का और भक्त लोग दर्शन कर रहे हैं दोनों का, दोनों का दर्शन कर रहे हैं। हाँ चैतन्य गोपाल साक्षी गोपाल दोनों का दर्शन कर रहे हैं है ना। और दोनों में क्या है कि दोनों में तेज, क्योंकि एक ही हैं, दोनों एक ही हैं, तो दोनों में दीप्तिमान तेज दिखाई दे रहा है। दोनों के नेत्र कमल जैसे हैं, दोनों भाव में मग्न हैं और दोनों के मुखमंडल पूर्ण चंद्रमा की तरह से, कोई अंतर नहीं दिखाई दे रहा है भक्तों में। दुहा देखी नित्यानंद प्रभु महारंगे ठारा ठारी करी हासे भक्त गण संगे। जब श्री नित्यानंद ने श्री चैतन्य महाप्रभु तथा गोपाल विग्रह दोनों को इस तरह देखा तो वे भक्तों से परिहास करने लगे जो सब के सब मुस्करा रहे थे। तो नित्यानंद प्रभु जो है हंसी करने लगे कि यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु भक्त के भाव में है, भक्त के भाव में साक्षी गोपाल का दर्शन कर रहे हैं लेकिन वास्तव में एक ही हैं दोनों है ना। तो ये हंसी की हंसी का विषय है, ये हंसने वाली बात है। क्या हंसने वाली बात है कि भगवान अपने को छिपा रहे हैं, दिखा रहे हैं कि मैं भक्त हूँ लेकिन देखने में तो बिल्कुल वही हैं है ना, तो इसलिए भक्त लोग हंस रहे हैं। यही मैं ए मत महारंगे से रात्रि वंचिया प्रभाते चलीला मंगल आरती देखिया। इस तरह से चैतन्य महाप्रभु ने मंदिर में वो रात बड़े आनंद से बिताई। प्रातःकालीन मंगल आरती देखने के बाद उन्होंने अपनी यात्रा आरंभ की। तो मंगल आरती चैतन्य महाप्रभु ने कहाँ पर की? हाँ कटक में साक्षी गोपाल के मंदिर में मंगल आरती करके और अपनी यात्रा आरंभ की है ना, यात्रा आरंभ की है ना। अब यात्रा भगवान चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों के साथ प्रारंभ कर रहे हैं, कहाँ से कहाँ के लिए? हाँ कटक से पुरी के लिए। तो वो साक्षी गोपाल का जो मंदिर इस समय है वो उस स्थान को कटक बोलते हैं या साक्षी गोपाल? साक्षी गोपाल नहीं बोलते, अब कटक नहीं बोलते ना। हाँ तो इसका मतलब है कि जब ये जो कथा चल रही है उस समय साक्षी गोपाल यहाँ पर नहीं थे। अच्छा, कटक में थे। कला है, प्रेम कला है हुआ, तो फिर जो इधर साक्षी गोपाल में आए। अच्छा अच्छा, तो कटक में, तो कटक से जो है चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों के साथ अब चल पड़े हैं कहाँ के लिए? जगन्नाथपुरी के लिए। अच्छा, आप मेरे पीछे बोलिए। भुवनेश्वर पथे जय छे कैला दर्शन, विस्तारी वर्णे अछिन दास वृंदावन। भुवनेश्वर पथे जय छे कैले दर्शन, विस्तारी वर्णी अछिन दास वृंदावन। भुवनेश्वर पथे जय छे कैला दर्शन, विस्तारी वर्णी अछिन दास वृंदावन। हाँ, शब्दार्थ बोलिए। भुवनेश्वर पथे, भुवनेश्वर जाते समय जय छे, जैसे कैला उन्होंने किया दर्शन, दर्शन विस्तारी विस्तार से वर्णया छेन वर्णन किया है दास वृंदावन, श्रील वृंदावन दास ठाकुर ने। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। श्रील वृंदावन दास ठाकुर ने अपनी पुस्तक चैतन्य भागवत में श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा भुवनेश्वर जाते समय देखे गए स्थानों का विस्तार से वर्णन किया है। तो इसका मतलब जगन्नाथपुरी चैतन्य महाप्रभु बाद में गए, कटक से आए भुवनेश्वर, है ना, और भुवनेश्वर से फिर जाएंगे जगन्नाथपुरी। ठीक है, अभी तो भुवनेश्वर जगन्नाथपुरी के बीच में पड़ता है साक्षी गोपाल, है ना। पहले जो है कटक से भुवनेश्वर आए और भुवनेश्वर से फिर जगन्नाथपुरी जाएंगे, है ना। तो हम सुनेंगे प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की, श्रील वृंदावन दास ठाकुर ने अपने ग्रंथ चैतन्य भागवत के अंत खंड में श्री चैतन्य महाप्रभु की कटक यात्रा का बहुत ही सुंदर वर्णन प्रस्तुत किया है। कटक यात्रा, उस यात्रा में महाप्रभु बालीहस्ता या बाल कीट चटी नामक स्थान गए, तब वे भुवनेश्वर गए जहाँ शिव मंदिर स्थापित है। भुवनेश्वर का मंदिर बाल काटी चटी से लगभग 5-6 मील की दूरी पर है। स्कंद पुराण में शिव मंदिर का उल्लेख भगवान के उपवन एवं एक आम वृक्ष विषयक कथा में हुआ है। काशीराज नामक एक राजा भगवान कृष्ण से युद्ध करना चाह रहा था, अतः उनसे लड़ने की शक्ति प्राप्त करने के लिए उसने शिव जी की शरण ली। सुन रहे सब लोग, हाँ, उसकी सेवा से प्रसन्न होकर शिव जी ने कृष्ण से युद्ध करने में उसकी सहायता की। देखो कैसा उल्टा कार्य, महाभागवत कहलाते हैं और कृष्ण से युद्ध करने में उस राजा की सहायता की। शिव का नाम आशुतोष है, जिसका अर्थ यह है कि जब कोई उनकी पूजा करता है तो वे बहुत शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, चाहे भक्त किसी भी उद्देश्य से पूजा करे, और भक्त जो भी वर मांगता है वे उसे देते हैं। अतएव लोग शिव जी की पूजा करने के अति इच्छुक रहते हैं। कैसे लोग? आसुरी स्वभाव के लोग शिव जी की पूजा करने के बहुत इच्छुक रहते हैं, आसुरी स्वभाव के लोग, क्योंकि शिव जी जो है उनकी गलत सलत जो भी इच्छाएं हैं वो पूरी कर देंगे। विष्णु जी तो नहीं, विष्णु जी देखेंगे कि कैसी इच्छा है, वो तो दर्शन भी नहीं देंगे, लेकिन शिव जी जो है गलत सलत जो भी इच्छा है वो पूरी कर देंगे। इसलिए शिव जी की पूजा करो भाई, है ना। तो आसुरी स्वभाव के लोग जो है प्रभुपाल लिखते हैं, अतएव लोग शिव जी की पूजा करने के अतएव इच्छुक रहते हैं। इस प्रकार शिव जी ने काशीराज की सहायता की, किंतु युद्ध में न केवल वो पराजित हुआ अपितु मारा भी गया। शिव जी ने उसको वचन दे दिया, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, लेकिन क्या हुआ, सबसे पहले तो वही मारा गया। इस तरह पाशुपत अस्त्र व्यर्थ हुआ। शिव जी का पाशुपत अस्त्र है जिससे वो पूरी सृष्टि का विनाश करते हैं, वो काम नहीं किया, उससे कुछ काम नहीं चला। भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्र के सामने पाशुपत अस्त्र का कुछ प्रभाव नहीं। इस तरह पाशुपत अस्त्र व्यर्थ हुआ और कृष्ण ने काशी नगरी में आग लगा दी। बाद में शिव जी को अपनी भूल का आभास हुआ कि उन्होंने काशीराज की सहायता क्यों की, अतः उन्होंने कृष्ण से क्षमा मांगी। उन्हें वरदान स्वरूप कृष्ण से एकाम्र कानन नामक स्थान प्राप्त हुआ। एकाम्र कानन, कानन का मतलब वन, एक आम का वृक्ष, कुछ विशेष होगा वो, एक आम्र कानन, एक आम के वृक्ष का जंगल, ये शिव जी को प्राप्त हुआ स्थान। बाद में केसरी वंश के राजाओं ने यहाँ अपनी राजधानी स्थापित की और कई सौ वर्षों तक उन्होंने उड़ीसा राज्य में शासन किया। यहाँ प्रभुपाद जी का तात्पर्य समाप्त हुआ। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में चैतन्य भागवत की बात करते हैं कि अंत खंड में ये कथा आती है। तो ये कथा जो है आप लोग सुन लीजिए किस प्रकार से कथा आती है। तो अंत खंड का दूसरा अध्याय है। तो इसमें लिखा है, तब प्रभु गौरचंद्र श्री भुवनेश्वर नामक गुप्त काशी में आए। ठीक है, गुप्त काशी में आए जहाँ श्री शिव जी वास करते हैं, जहाँ सब तीर्थों का बिंदु बिंदु जल लाकर शिव जी ने स्वयं बिंदु सरोवर बनाया। भुवनेश्वर में क्या है, बिंदु सरोवर, श्री शिव जी का प्रिय सरोवर जानकर श्री चैतन्य देव ने स्नान करके उसे विशेष रूप से अति धन्य कर दिया। भगवान जो है भक्त के रूप में वो तो पवित्र होने के लिए स्नान कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में पवित्र कर रहे हैं, है ना। तो भगवान तो जो है ये शिव जी ने बनाया है, सब तीर्थों से बूंद बूंद जल ला करके सरोवर बनाया। कितने तीर्थों का जल ला करके तालाब बना होगा, कितने बिंदु, कितने बूंद, है ना। शिव जी ने कितना परिश्रम किया, तो शिव जी के इतने परिश्रम को देख करके भगवान जो है ये दिखा रहे हैं कि देखो शिव जी ने इतना परिश्रम किया, इतने तीर्थों का जल लाए, है ना, करोड़ों करोड़ों बूंदों से तो कहीं तालाब बना होगा, है ना, तो करोड़ों करोड़ों तीर्थों का जल लेके आए शिव जी। तो भगवान चैतन्य ने स्नान किया ये कह करके कि मैं पवित्र हो जाऊंगा, लेकिन वास्तव में क्या किया, उसको भी पवित्र किया, है ना। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानी, है ना, तो तीर्थों को भी पवित्र करते हैं भगवान के चरण, है ना। प्रभु ने जाकर श्री शंकर के प्रकट दर्शन किए। वहाँ चारों ओर सेवकगण शिव शिव ध्वनि कर रहे थे, चारों ओर पंक्ति की पंक्ति घी के दीपक जल रहे थे और निरंतर जल से अभिषेक हो रहा था। अपने प्रिय शिव जी का वैभव देखकर श्री प्रभु व समस्त वैष्णवगण संतुष्ट हुए, जिनके चरणारविंद के रस में मत होकर शिव जी को वस्त्र धारण का भी ज्ञान नहीं रहे। सुनिए ध्यान से, जिनके चरणारविंद के रस में मत होकर शिव जी को वस्त्र धारण का भी ज्ञान नहीं है, ऐसे प्रभु शिव के सामने नृत्य करने लगे। सुने, अरे वो शिक्षाष्टकम, आंखें बंद है, क्या सुना, नहीं सुना, कौन बताएगा, क्या सुना, हाँ, ऐसे भगवान शिव जी के सामने नृत्य कर रहे हैं, जिनके चरण रस की में मत होकर शिव जी दिगंबर हो जाते हैं, वस्त्र त्याग देते हैं, वस्त्र नहीं धारण करते हैं, ऐसे भगवान जो है शिव जी के सामने नृत्य कर रहे हैं। शिव जी के आगे आनंद पूर्वक नृत्य गान करके श्री गौरचंद्र उस रात्रि को उसी ग्राम में रहे। कौन सा ग्राम है वो? भुवनेश्वर। जिस प्रकार शिव जी को वो स्थान प्राप्त हुआ उस कथा को स्कंद पुराण के अनुसार सुनो। तबे प्रभु आई लेन श्री भुवनेश्वर गुप्त काशी वास जथा करे न शंकर सर्व तीर्थ जल जथा बिंदु बिंदु आनी बिंदु सरोवर शिव श्री जिला आपनी शिव प्रिय सरोवर जाने श्री चेतन स्नान करी विशेष करी ला अति धन देखिले नगीय प्रभु प्रकट शंकर चतुर्दिगे शिव ध्वनि करे अनुचर चतुर्दिगे सारी सारी घृत दीप ज्वले निर्वधि अभिषेक हई तेछ जले। प्राचीन काल में पार्वती सहित श्री शिव जी अनेक समय तक परम एकांत स्थान पर काशी में रहे। पहले काशी में कोई मनुष्य नहीं रहता था, काशी बिल्कुल एकांत स्थान था और शिव जी रहते थे काशी में। कैलाश में तो बाद में गए, कैलाश पर्वत तो बाद में गए, पहले काशी में रहते थे शिव जी। पीछे गौरी सहित श्री शिव जी तो कैलाश को चले गए और मनुष्य और राजागण काशी में विलास करने लगे बाद में। तब काशीराज नामक एक राजा हुआ जो शिव जी की पूजा करके काशीपुरी का भोग करने लगा। देवस उसकी मृत्यु निकट आ गई तो क्या हुआ? विनाश काले विपरीत बुद्धि, उसकी मौत आ गई थी इसलिए वो शिव जी की पूजा करके उस कृष्ण को जीतने के लिए उग्र तपस्या द्वारा शिव जी की पूजा करने लगा। शिव जी की पूजा करने लगा कृष्ण को जीतने के लिए। तपस्या के प्रभाव से शिव जी प्रत्यक्ष हुए और कहा कि वर मांगो। तब राजा ने वर मांगा, प्रभु तुम्हारे चरणों में एक वर मांगता हूं कि युद्ध में कृष्ण को जीत सकूं। शंकर जी के अचिंत चरित्र हैं, कौन जाने किस प्रकार से कृपा करते हैं। उससे कहा, हे राजन तू युद्ध को चल, तेरे पीछे मैं सब गणों सहित चल रहा हूं। तो तू मर, तुम आगे आगे चल, मैं तेरे पीछे पीछे चल रहा हूं। तो मरेगा कौन? तू ही मरेगा पहले। शिव जी ने कहा, तुझे जीतने की किसमें सामर्थ्य है? मैं तेरे पीछे पाशुपत अस्त्र लेकर उपस्थित हूं। वो मूढ़मती शिव का बल पाकर बड़ा प्रसन्न हो गया। आ मूर्ख, शिव का बल पाकर प्रसन्न होकर श्री कृष्ण के साथ युद्ध करने के लिए चल दिया। शिव जी भी उसका पक्ष लेकर उसके पीछे पीछे सब गणों के साथ युद्ध करने के विचार से चल दिए। एक बार मांगो प्रभु तो मारे चरणे जे ने मोहि कृष्ण जिन्नी वारे पारो रणे भोलनाथ शंकरे रे चरित्र अगाध के पूज के रूपे कार्य करे ने प्रसाद तारे बलि लेने राजा चले योद्धे तुमी तोरे पाछे सर्वगण सह आछी आमी तोरे जिनी वे कहे न कार्य शक्ति आछे पाशुपत अस्त्र लये तुम मुई तोरे पाछे। श्री देवी की नंदन सब प्राणियों के भीतर के जानने वाले हैं, उसी क्षण सब वृतांत जान गए कि कौन आ रहा है द्वारका में है? तो द्वारका में आक्रमण हो और द्वारका वासियों को किसी प्रकार की असुविधा हो उससे पहले ही भगवान ने चक्र छोड़ दिया। बहुत दूर से वो द्वारका में आएगा, आक्रमण करेगा। वैसे द्वारका सुरक्षित है, चारों तरफ समुद्र है, लेकिन उससे भी पहले भगवान ने चक्र छोड़ दिया है? भगवान ने चक्र छोड़ दिया। वृतांत जानकर श्री कृष्णचंद्र ने अपने सुदर्शन चक्र को सबको नष्ट करने के लिए छोड़ दिया। सुदर्शन चक्र के आगे किसी की रोक नहीं चलती। चक्र ने प्रथम ही काशीराज का सिर काट दिया। अंत में उसके संबंध से समस्त काशी को जला करके पूर्ण रूप से भस्म कर दिया। काशी को जला देखते ही क्रोध होकर महेश्वर ने अति भयंकर पाशुपत अस्त्र को छोड़ दिया। चक्र के आगे पाशुपत अस्त्र की क्या चले, चक्र के तेज को देखकर वो तुरंत भाग गया। कौन भाग गया? पाशुपत अस्त्र भाग गया चक्र के सामने है? कौन यहां जान देगा अपनी अपनी जान बचा करके पाशुपत अस्त्र भाग गया। तब शिव जी की ओर चक्र दौड़ा, हाँ, अब शिव जी की ओर चक्र दौड़ा तो उसके भय से शंकर जी भी भागे भागे। सुदर्शन चक्र के तेज से सब भवन डर गए, अतः शिव जी के भागने को कोई दिशा नहीं मिली। अब कहाँ जाएं, सब मना करते यहां मत आइए। हाँ, शिव जी इधर जाते उधर जाते उधर जाते, ना 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 इधर ना, इधर नहीं इधर नहीं इधर नहीं इधर नहीं, हाँ उधर जाओ उधर जाओ। हर लोक में जो है शिव जी को मनाही हो रही है कि भाई हम, हाँ हमें भी तो अपनी सुरक्षा की आवश्यकता है, आप यहां बताओ। तो सब जो है लोग मना कर रहे हैं, यहां मत आइए यहां मत आइए। उसी प्रकार जिस प्रकार दुर्वासा ऋषि चक्र के तेज से पीड़ित हुए थे, उसी प्रकार आज शिव जी की भी वही गति हुई। तो दुर्वासा मुनि भी चक्र के तेज से पीड़ित हुए थे, पता है कितने लोगों को पता है? अच्छा, आधे लोगों को पता है, आधे लोगों को पता नहीं है। तो क्या क्या कारण था? हाँ माता जी आप बताओ। हाँ सुना नहीं पड़ रहा है। जोर से कौन बोल सकता है? आप बोल सकते हैं, बोलो। अम्बरीश महाराज के प्रति दुर्वासा मुनि ने अपराध किया था। अपराध थोड़ा है, ज्यादा ज्यादा कितना ज्यादा? क्या मार डालने के लिए कृत्य उत्पन्न की, थोड़ा बहुत दंड देने के लिए नहीं कि भाई थोड़ा दंड दिया जाए। अम्बरीश महाराज को मार डालने के लिए कृत्य उत्पन्न की थी दुर्वासा मुनि ने, तो चक्र ने जो है उस कृत्या को नष्ट कर दिया और दुर्वासा मुनि के पीछे पड़ गया। अब दुर्वासा मुनि भाग रहे हैं हर जगह चक्र के कारण, है ना। तो शिव जी की वही गति हुई। अंत में शिव जी जान गए कि सुदर्शन से श्री कृष्ण के बिना कोई रक्षा करने में समर्थ है नहीं है। शिव जी क्या जान गए? तो क्या पहले नहीं जानते थे शिव जी? पहले नहीं जानते थे है? तो फिर क्यों किया? शिव जी तो महाभागवत हैं, है ना। बल्कि शिव जी ने ही कहा था दुर्वासा मुनि को कि भाई आप उन्हीं के पास जाओ। दुर्वासा मुनि को तो शिव जी ने कहा था, जब सब मना कर रहे हैं तो शिव जी ने कहा अरे आप जो है वैकुंठ में जाओ, भगवान जिनका चक्र है वही रक्षा करेंगे। तो शिव जी ने तो दुर्वासा मुनि को कहा, और अब शिव जी क्यों भाग रहे इधर उधर, क्या कारण है? भगवान लीला करते हैं तो वो तो भगवान अपनी लीला करते हैं, शिव जी की लीला थोड़ी है। शिव जी तो माया के प्रभाव से, ये माया है भगवान की जो भुला देती है। और अब उनके लिए लज्जा की बात है कि मैं उनके शरण कैसे लूं, मैंने तो अपने बल पर जो है बोला था कि चल युद्ध कर कृष्ण को जीतने के लिए, तो मैं तो अपने बल पर जो है चल रहा था। अब ये बड़ी लज्जा की बात है शरण लेना, है ना। तो ये जो है एक स्थिति ऐसी हो जाती है, लज्जा की स्थिति हो जाती है। पाशुपत अस्त्र की करी वे चक्र स्थाने, चक्र दे देखी पलाये लसई छने, शिष्य महेश्वर पति जाए न थाइया, चक्र भय शंकर ओ जा, चक्र भय शंकर ओ जाए पलाइया, चक्र तेज व्यापी लेके सकल भुवन, पलाई ले देगे न पाए न त्रिलोचन, पूर्व जन चक्र तेजे दुर्वासा पीड़ित, हई ले न शिवे रोहाई ले से रित, शिष्य शिव बुझ ले न सुदर्शन स्थाने, रक्षा करी वे कहे न नाही कृष्ण बिने। वैष्णवाग्र गण शिव जी इस प्रकार चिंतन करके भय से त्रस्त हो श्री गोविंद की शरण में गए। शिव जी को क्या कहा गया है? वैष्णव अग्रगण्य, वैष्णव में सबसे आगे जिनकी गिनती होती है, सबसे पहले गिनती होती है वैष्णव में, वो अब किसके शरण में गए? गोविंद के शरण में गए। एवं स्तुति की, स्तुति की, इत के चिंतिया वैष्णव अग्र त्रिलोचन, भय त्रस्त हई गेला गोविंद शरण। अब गोविंद के शरण में गए कैसे? महाप्रभु देव की नंदन की जय हो, सर्वांतर्यामी सब जीवों को शरण देने वाले आपकी जय हो, सुबुद्धि कुबुद्धि के देने वाले आपकी जय हो। अब ऐसी प्रार्थना करनी पड़ेगी, क्या? सुबुद्धि कुबुद्धि देने वाले आपकी जय हो, सुबुद्धि कुबुद्धि देने वाले आपकी जय हो। सृष्टि पालन व संहार कर्ता की जय हो। अदोषदर्शी कृपा सिंधु की जय हो, जय हो। अदोषदर्शी यानी आप दोष नहीं देखते हैं तो आप मेरे भी दोष मत देखिए। अदोषदर्शी हाँ कृपा सिंधु की जय हो, जय हो। दुखी जनों के एकमात्र बंधु आपकी जय हो, जय हो। सब अपराध नष्ट करने वाले क्या सब अपराध नष्ट करने वाले तथा शरणागत वत्सल प्रभु की जय हो। प्रभु मेरा अपराध क्षमा करो, आपकी शरण में आया हूँ। जय जय महाप्रभु देव की नंदन, जय सर्व व्यापी सर्व जीवेर शरण। जय जय सुबुद्धि को बुद्धि सर्वदाता, जय जय सृष्टा हर्ता सभारे रक्षिता। जय जय अधोष द्वारा सी कृपा सिंधु, जय जय संतप्त जाने रे एक बंधु। जय सर्व अपराध भंजन शरण, दोष क्षमा कर प्रभु लै लो शरण। सब जीवों के स्वामी शिव जी की स्तुति सुनकर चक्र का तेज शांत करके भगवान गोविंद प्रकट हो गए, दर्शन दिया। आपके चारों ओर गोप गोपियां शोभा दे रहे हैं, ऐसे दर्शन दिए भगवान ने। गोप गोपियां से घिरे हुए भगवान कुछ क्रोध मिश्रित हंसी से गोविंद बोले। भगवान हंस रहे हैं लेकिन कुछ क्रोध भी मिश्रित हैं। क्रोध का मिश्रण हंसी में क्रोध का मिश्रण भी है। बोले क्यों शिव जी, आप तो मेरे शुद्ध स्वरूप को जानते हो, तब इस समय आपने ये कुबुद्धि क्यों उत्पन्न हो गई? अधम काशी राज तुच्छ कीड़ा है जिसके लिए आपने मेरे साथ युद्ध किया। आप ऐसी गलती करें तो ये बड़ी लज्जा की बात है आपके लिए है? वो तो काशी राज कीड़ा है, कीड़े को क्या अकल है, कीड़े के पास तो बुद्धि नहीं होती। आप इतने बुद्धिमान होकर के आपने उसका पक्ष लिया। कीड़े को थोड़ी बुद्धि होती है, किसको काट रहा है वो कहीं भी किसी के भी पीठ में सिर में कट चढ़ के काटे तो वो अगर मुझे जीतना चाहता है तो कीड़े की ऐसी बुद्धि है, उसकी अकल है। और आप इतने समझदार होकर के आप उसके पक्ष में मुझे जीतने के लिए आप उसकी सहायता करते हैं, तो क्रोध की बात तो यहाँ पर है, इसलिए हंस रहे हैं भगवान। अधम काशीराज तुच्छ कीड़ा है जिसके लिए आपने मेरे साथ युद्ध किया। देखते हो ये मेरा सुदर्शन चक्र है जिसका पराक्रम आप भी सहन नहीं कर पाते। आपको सब पता है, आपसे जैसा आपसे ज्यादा और कौन जानता है मेरे तत्व को, और आप ही ऐसी गलती करते हो। ब्रह्मास्त्र पाशुपत अस्त्र आदि जितने भी अचूक महाअस्त्र हैं वे भी सुदर्शन चक्र को रोक नहीं सकते। ये उनके स्वामी को भी मारने को तैयार रहता है। ब्रह्मास्त्र के स्वामी कौन है? ब्रह्मास्त्र किसने बनाया? ब्रह्मा जी ने। और पाशुपत अस्त्र बनाया शिव जी ने, है ना। तो अस्त्रों को भी जो है ये मार देगा और अस्त्र के स्वामी को भी मार देगा। ये मेरा सुदर्शन चक्र है। पृथ्वी पर आपके अतिरिक्त मैं और किसी को नहीं देखता जो मेरा अनादर करे। इतना जान करके प्रभु के कुछ क्रोध भरे शब्द सुनकर शिव जी मन में बड़े कंपित हुए और अंत में प्रभु के चरण कमल पकड़कर शिव जी आत्मनिवेदन करने लगे। हे प्रभु, सब संसार आपके अधीन है, स्वतंत्र होने की किसमें सामर्थ्य है। जिस प्रकार वायु सूखे तिनकों को उड़ाती है उसी प्रकार समस्त भवन आपके परतंत्र हैं। हे प्रभु, आप जो कराते हो जीव वही करते हैं, ऐसा कौन है जो आपकी माया के पार जा सके। फिर आपने तो मुझे अहंकार विशेष रूप से दे रखा है। शिव जी कह रहे हैं क्या क्या, आपने मुझे अहंकार विशेष रूप से दे रखा है जिससे मैं अपने से बड़ा किसी को नहीं देख पाता हूं। आपकी माया ही प्रभु मेरी दुर्गति कर रही है, मैं क्या करूं। मैं अस्वतंत्र बुद्धि वाला हूं, आपके चरण कमल ही मेरे एकमात्र जीवन है। वन में पड़ा हुआ इन्हीं का ध्यान करता रहता हूं तो भी आप ही मुझसे अहंकार कराते हो। मैं तो पूरी कोशिश करता हूं आपके चरणों का ध्यान करता हूं लेकिन तो भी आपकी माया मुझे लपेट देती है। मैं क्या करूं जो आपकी इच्छा, तथापि प्रभु मैंने अपराध किया है, सब क्षमा करके मेरे ऊपर कृपा करिए, मुझसे ऐसी कुबुद्धि जिससे फिर ना हो, दया करके प्रभु ऐसा वरदान दीजिए। कितना बढ़िया है प्रार्थना करना, तो ऐसी प्रार्थना करो, प्रार्थना हो तो ऐसी हो। कैसी प्रार्थना? दोबारा ऐसी गलती मेरे से ना हो ऐसा वरदान दीजिए, ऐसी कुबुद्धि दोबारा ना हो ऐसा वरदान दीजिए। मैंने अहंकार करके जो अपराध किया उसका उचित दंड ही पाया है, अब और अहंकार शेष नहीं रहा प्रभु, आज्ञा करो मैं कहाँ रहूं, आपके त्र किसके चरणों में अब शरण लूं। अब यही बताओ, आपके अलावा और किस किस चरणों में शरण लूं? तुम्हारे अधीन प्रभु सकल संसार, स्वतंत्र है ते शक्ति अच्छे कहार, पवन चलाए जेन शुष्क त्रिगण, ए मत अस्वतंत्र सकल भुवन, जिकरा है प्रभु तुमी से जीव करे, हे ने के वा आछे जे तुम्हारे माया तरे, विशेष दिया छे प्रभु मोरे अहंकार, अपने रे अपना रे बड़े बे नहीं देखो आर, तुम्हारे माया है मोरे कराए दुर्गति, की करे मु प्रभु मोई अस्वतंत्र मति, तोरे पाद पद्म मोर एकांत जीवन, अरण्य था कि मो चिंतित तुम्हारे चरण, तथापि मोरे से लो यायो अहंकार, मुई की करे मु प्रभु जय इच्छा तुम्हारे, तथापि प्रभु मोई कैलु अपराध, सकल क्षमिया मोरे करह प्रसाद, हे मत को बुद्धि मोर जिन आर नये, हे बर देह प्रभु भैया सदय। शिव जी के वाक्यों को सुनकर प्रभु हंसे और कृपा करके बोले, हे शिव जी सुनो, आपको एक दिव्य स्थान देता हूं, वहां आप गणों सहित निवास करो। ये कामरक वन नामक मनोहर स्थान है, वहां आप कोटि लिंगेश्वर नाम से रहो। तो भुवनेश्वर नाम फिर बाद में पड़ गया ना, और कोटि लिंगेश्वर वहां पर स्थापित हुए, तो पहले वो एक वन था, एक कामरक वन, वो भी काशी की तुल्य सुंदर नगरी है, उसी जगह मेरी एक गोपनीय पुरी भी है, उसी जगह मेरी गोपनीय पुरी, कौन सी? जगन्नाथपुरी। हे शिव, आज मैं आपसे उसे कहता हूं, मेरी उस पुरी के मर्म को कोई नहीं जानता, समुद्र के तट पर वो स्थान है, बट के मूल में अति रम्य स्थान नीलाचल नामक श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र है, जिस समय काल अनंत ब्रह्मांडों का नाश करता है तभी उस स्थान का कुछ भी नहीं बिगड़ता है, उस स्थान में सदा ही मेरा निवास है, वही नित्य प्रति मेरा भोजन होता है, जगन्नाथ है ना, नित्य प्रति भोजन होता है। उस स्थान के प्रभाव से 10 योजन भूमि में, 10 योजन माने 120 किलोमीटर, 120 किलोमीटर तक की चारों तरफ भूमि में जितने जंतु कीड़े आदि रहते हैं सबको देवता लोग चतुर्भुज रूप में देखते हैं। उस स्थान में शरीर छोड़ना शुभ कहा है, उस स्थान में नींद लेने से समाधि का फल मिलता है और लेटने से प्रणाम करने का फल मिलता है और भ्रमण करने से प्रदक्षिणा का फल मिलता है, घूमने फिरने से ही प्रदक्षिणा का फल मिलता है, और कथा मात्र से मेरी स्तुति होती है, बातचीत। उस क्षेत्र का ऐसा अति निर्मल प्रभाव है कि वहां अपवित्र वस्तु खाने पर भी हविष्य अन्न का फल प्राप्त होता है। मेरे ही नाम वाला वो स्थान इतना सर्वाधिक प्रिय है, उसमें जितने प्राणी रहते हैं वे सब मेरे ही समान हैं, उस स्थान में यमराज को दंड देने का अधिकार नहीं है, वहां तो सबके भले बुरे कर्मों का विचार मैं ही करता हूं। इसका मतलब ये नहीं है कि जगन्नाथपुरी में जाकर के आप हर प्रकार के पाप करें, तो यमराज का तो अधिकार नहीं है, लेकिन भगवान छोड़ेंगे थोड़ी, दंड तो देंगे ही। ऐसी जो मेरी पुरी है उसके उत्तर दिशा में आपको रहने का स्थान देता हूँ, जगन्नाथपुरी से उत्तर दिशा में भुवनेश्वर है ना, वो स्थान भोग और मोक्ष देने वाला है एवं मनोहर है, वहां तुम श्री भुवनेश्वर नाम से विख्यात होगे। सिंधु तेरे वट मूले नीलाचल नाम, क्षेत्र श्री पुरुषोत्तम अति रम्य स्थान, अनंत ब्रह्मांड काले जखन संघरे, तब उसे स्थाने किछो करिते न पारे। सर्वकाल से स्थाने अमर वसति, प्रतिदिन अमर भोजन है तथि। से स्थान प्रभवे योजन दस भूमि, ताते बसे जत जंतु कीट कृमि। सभरे देखाए चतुर्भुज देव गणे, मरण मंगल करि कही जे स्थाने। निद्रते जे स्थाने समाधि फल है, शयन प्रणाम फल यदि यथा वेदे कहे। प्रदक्षिण फल पय करिले भ्रमण, कथा मात्र यथा है अमर स्तवन। हे न से क्षेत्र अति प्रभाव निर्मल, मत खाई ले वो पाए हिशेर फल। श्री शिव जी पुरी की अद्भुत महिमा सुनकर पुनः श्री कृष्ण के चरण कमलों को पकड़कर कहने लगे। अब शिव जी ने जब पुरी की महिमा सुनी तो उनका लोभ बढ़ गया, तो भगवान के चरण कमल पकड़कर कहने लगे, हे प्राणनाथ मेरा एक निवेदन सुनिए, मैं सब समय विशेष अहंकार में रहता हूं, इस कारण आपको छोड़कर अन्य स्थान में रहूंगा तो कभी कुशल नहीं होगी। मतलब अहंकार मुझे जो है तंग करेगा, तो इसलिए मुझे आपके चरण कमलों में स्थान चाहिए। अतः मेरा मन आपके ही पास रहने का है, जिसमें इस दुष्ट अहंकार से मेरा मन बहिर्मुख ना हो सके। इतने पर भी यदि आप मुझे अपना दास मानते हैं तो मुझे अपने क्षेत्र में एक स्थान दीजिए। अब ये तो स्थान दे दिया आपने, लेकिन उस क्षेत्र में मुझे एक स्थान दे दो। आपके श्रीमुख से क्षेत्र की महिमा सुनकर वहां रहने की मेरी बड़ी इच्छा हो गई है प्रभु, निकृष्ट होकर आपके सेवा करूंगा, बहुत नीच सेवा करूंगा आपकी, निकृष्ट होकर सेवा करूंगा, बहुत नीच सेवा करूंगा आपकी, छोटी से छोटी सेवा करूंगा। प्रभु मेरे लिए वहां एक तिल मात्र स्थान दे दीजिए। एक तिल जानते तिल कितना थोड़ा होता है, उतना स्थान दे दो मुझे, अब मैं जो है छोटी से छोटी सेवा करने के लिए तैयार हूं, जरा सा स्थान तो दे दो मुझे वहां। कहां पर? जगन्नाथपुरी में। हे प्रभु मेरे लिए वहां एक तिल मात्र स्थान दीजिए, क्षेत्र में वास करने की मेरी बड़ी उत्कंठा है। ऐसा कहकर शिव जी रुदन करने लगे, रोना है ना, तो रोना ही एक बहुत बड़ा बल होता है भक्त का, है भक्त का जो बल है वो रोना ही होता है। रो रो करके भगवान से वो मांग लेता है भक्ति का वरदान, सेवा। चंद्रमा के समान मुख वाले श्री कृष्ण शिव के वचन सुनकर बड़े संतुष्ट हुए, उन्हें आलिंगन करके बोले, हे शिव जी सुनो, आप मेरे देह के समान हो, जो आपके प्रिय हैं वे मुझे अत्यंत प्रिय हैं, जहां आप हैं वहां मैं हूं, इसमें अन्य बात नहीं है, मैं आपको समस्त क्षेत्र स्थान देता हूं। लो एक तिल मात्र स्थान मांग रहे थे और भगवान ने क्या कहा, पूरा क्षेत्र आपको दे रहा हूं। कौन सा पूरा क्षेत्र? जगन्नाथपुरी। मैं आपको समस्त क्षेत्र में स्थान देता हूं, आप मेरे क्षेत्र के सदा के लिए रक्षक रहो, क्षेत्रपाल। तो पूरे क्षेत्र में आपको स्थान देता हूं, पूरे क्षेत्र में आप भ्रमण करो और क्या करोगे, रक्षा करो, क्षेत्रपाल। वो क्षेत्र मैंने आपको जो एकामक वन दिया है, आप परिपूर्ण रूप से वहीं रहो, वो क्षेत्र मेरा अत्यंत प्रिय है, मेरी प्रसन्नता के लिए सर्वदा वहीं रहो। जो मेरा भक्त होकर आपका आदर नहीं करता, वो भक्ति दिखाकर मेरी विडंबना मात्र ही करता है। इस प्रकार शिव जी को वो स्थान प्राप्त हुआ जो आज तक भुवनेश्वर नाम से विख्यात है, ये दिखाने के लिए कि शिव जी श्री कृष्ण को बड़े प्रिय हैं। श्री गौरचंद्र ने शिव जी के आगे नृत्य किया, समझ गए, जो कुछ श्री कृष्ण ने पुराणों में कहा उस समय वो सब स्वयं साक्षात दिखा रहे थे। भगवान ने पुराणों में कहा है क्या कि शिव जी के समान मेरा प्रिय कोई नहीं है, तो गौरचंद्र वो दिखा भी रहे हैं, शिव जी के सामने क्या कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। श्री गौरचंद्र शिव राम गोविंद कहकर हाथ से ताली दे देकर सदा नृत्य करते थे। स्वयं गौरचंद्र भक्तों के साथ भुवनेश्वर गए और वहां सबने शिव जी की पूजा की। जो शिक्षा गुरु भगवान की शिक्षा नहीं मानते वे सब लोग अपने दोष से दुख पाते हैं। उस शिव ग्राम में भक्तों के साथ गौरचंद्र शिवलिंगों के दर्शन करते करते बड़े आनंद में उमड़ रहे थे। एक बड़े एकांत स्थान में एक शिव मंदिर को देखकर गौर सुंदर भगवान बड़े प्रसन्न हुए। उस ग्राम में जितने देवालय थे उन सबको श्री गौर सुंदर ने देखा इस प्रकार सब मार्ग बड़ी प्रसन्नता से चलकर प्रभु कमलपुर में आए। कमलपुरी जगन्नाथपुरी के निकट है, उधर आए। तो ये जो कथा है ये मैंने पढ़ के सुनाई आप लोगों को। सुन से वे तुम मोर निज देहसम जे तुम्हारे प्रिय से आमारे प्रियतम यथा तुम तथा आमी इथे नही आन सर्व क्षेत्र तुम्हारे दिलांग आम स्थान क्षेत्र रे पालक है तुम्हें सर्वथा आमार है सर्व क्षेत्र तुम्हारे दिलांग अधिकार है। एकाम्रक वन जे तुम्हारे दिल आमी ताते परिपूर्ण रूपे थाके तुमी से क्षेत्र आमारे परम प्रियतम मोर प्रीत तथा ये था कि वे सर्वक्षण जी आमारे भक्त है ये तामा तो माना आधारे से हमारे मात्र जैन विडम्बना करे हे ने मत शिव पाइले ने से स्थान अद्यापि विख्यात भुवनेश्वर नाम शिव प्रिय बाणे कृष्ण ताहा बुझाई ते नृत्य करे गौर चंद्र शिवेरे अग्रते। तो अब इतनी जो है कथा हमने सुनी। अब आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है या चर्चा है? हाँ जी, एक दो तीन, चलो पहले आप।
तो भगवान भी कहते हैं और भगवान भी है भक्त भी है, तो इसके वजह से बताइए कि इनको भगवान किस रूप में हम देख सकें और भक्त किस रूप में देख सकें?
शिव जी को जब भगवान कहते हैं तो भगवान शब्द जो है ये बड़ा सामान्य है। शास्त्रों में जो है भगवान शब्द किसी व्यक्ति को भी कहा जा सकता है अगर उसके पास छह प्रकार के ऐश्वर्यों में से कोई भी एक ऐश्वर्य थोड़ा अधिक मात्रा में हो। धन बल यश सौंदर्य ज्ञान वैराग्य, इन छह ऐश्वर्यों में से कोई भी ऐश्वर्य किसी व्यक्ति के पास अगर ज़्यादा है, ज़्यादा मात्रा में, तो भगवान कहा जाता है। वशिष्ठ भगवान, भगवान वशिष्ठ, भगवान विश्वामित्र, भगवान नारद, भगवान इंद्र, हर जगह लिखा रहता है भगवान, है ना। लेकिन कृष्ण कौन है? स्वयं भगवान। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण स्वयं भगवान है। तो स्वयं भगवान में जो है छवों के छव ऐश्वर्य असीमित मात्रा में, ठीक है ना, छवों ऐश्वर्य असीमित मात्रा में है, इसलिए कृष्ण को स्वयं भगवान कहते हैं, ठीक है। और कृष्ण के द्वारा ही वो दिए गए ऐश्वर्य, किसी को अगर दिए तो कृष्ण के द्वारा दिए गए हैं, कोई स्वतंत्र नहीं है कृष्ण से, ठीक है ना। तो शिव जी तो है महाभागवत हैं, लेकिन हाँ वो ईश्वर तत्व भी हैं शिव जी, क्योंकि वो जीव तत्व तो नहीं है, जीव तत्व नहीं है, और शिव जी जो है विष्णु तत्व भी नहीं है। तो शिव तत्व एक अलग ही है जो जीव तत्व और विष्णु तत्व के बीच में है, ठीक है ना। तो शिव जी जो है ईश्वर तत्व में ही आते हैं, जैसे कि दूध से दही बनता है, है ना, उसी प्रकार से विष्णु से शिव बनते हैं, ठीक है ना। तो वो चीज़ जो है मतलब शिव जी को इसलिए ज़्यादा अच्छा है कि हम लोग शिव जी को भगवान ना कहें, क्योंकि हम कृष्ण को भगवान कहते हैं, तो कुछ अंतर रखने के लिए हम शब्द का प्रयोग ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। अब हमारी पुस्तकों में भगवान शब्द लिखा हुआ है, लेकिन जो है प्रभुपाद ने तो लॉर्ड शब्द का प्रयोग किया है, और लॉर्ड में शिव जी के लिए एल स्मॉल रखा है और भगवान कृष्ण के लिए एल कैपिटल रखा है। तो अब अनुवाद में तो वो नहीं हो सकता, तो लॉर्ड को अनुवाद में भगवान कर दिया हमारी पुस्तकों में, ठीक है ना। लेकिन जब प्रभुपाद ने कुछ अंतर रखा है अंग्रेजी में, तो हिंदी में भी जो है ज़्यादा अच्छा है कि भगवान शिव ना बोल करके हम शिव जी बोलें, शिव जी। इसलिए हम तो कहीं लिखा भी है तो भगवान शिव ना पढ़ के हम शिव जी पढ़ते हैं, शिव जी। भगवान ब्रह्मा ना पढ़ के ब्रह्मा जी, भगवान इंद्र हमारी पुस्तकों में भी अनुवाद किया गया, तो भगवान इंद्र है, भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा, जगह जगह लिखा हुआ मिलता है। तो ज़्यादा अच्छा ये है कि समझने के लिए हमें फिर जो है किसी शब्द का प्रयोग कहीं पर करना कहीं नहीं करना है, वो विचार करना चाहिए, ठीक है ना। और कोई? अच्छा, आपका, ठीक है।
बाणासुर की लीला भी आती है, और शिव जी ने वहाँ पे भी वही सेम गलती की थी, और उसके बाद काशीराज के साथ भी सेम गलती की, तो तो बुद्धिमान व्यक्ति का लक्षण ये होता है कि जैसे वो गलती बार बार दोहराता अच्छा, नहीं, और शिव जी महाभागवत हो कैसी अच्छा, गलती
नहीं, वो गलती नहीं है। बाणासुर के साथ जो युद्ध हुआ उसमें शिव जी ने वो गलती नहीं की, लेकिन हाँ गलती तो फिर भी मानी जाएगी, लेकिन वो गलती नहीं है। बाणासुर ने जो है शिव जी से वरदान मांगा था कि मुझे जो है आपके अलावा तो कोई दिखाई नहीं पड़ता है जो मुझसे युद्ध करे, आप ही मुझसे युद्ध करो। और पहले उसने शिव जी से वरदान मांगा था कि आप मेरी रक्षा करना। तो शिव जी ने कहा कि मूर्ख, तूने पहले से वरदान मांग लिया कि मैं तेरी रक्षा करूं, अब तू मुझसे युद्ध करना चाहता है, तो तुझको जो है मेरे समान योद्धा मिलेगा युद्ध करने के लिए, अब मैं तो युद्ध नहीं कर सकता क्योंकि मैं पहले के वरदान से बंधा हुआ हूँ। शिव जी ने यह कहा, ठीक है ना। तो जो है भगवान कृष्ण से युद्ध हुआ है ना, तो शिव जी को पता था, इसमें पता था, लेकिन वो वरदान से बंधे हुए थे। बाणासुर को वरदान दिया था उससे बंधे हुए थे, इसलिए उनको कृष्ण के साथ युद्ध करना पड़ा है ना। और इस युद्ध में शिव जी को भागना नहीं पड़ा, भगवान ने उनको जरमणास्त्र से सुला दिया कि आप सो जाओ, तो शिव जी को सुला दिया, ठीक है ना। आपका प्रश्न है
करोड़ों करोड़ों तीर्थों से एक एक बूंद ला के वो बिंदु सरोवर बनाए। भागवतम में ये डिस्क्रिप्शन आता है कुछ कि जो बिंदु सरोवर है वो भगवान विष्णु के आँखों के आंसू से बना था।
वो बिंदु सरोवर अलग है, जो गर्दा मुनि के आश्रम में जो बिंदु सरोवर बना था वो स्थान भी दूसरा ही है। वो गुजरात में कोई स्थान है वो बिंदु सरोवर, तो बिंदु सरोवर नाम से जो है मतलब अलग अलग स्थान हो सकते हैं, ठीक है ना। तो कर्दम मुनि का जो स्थान था वहाँ बिंदु सरोवर, तो भगवान के आंसुओं के बिंदु गिरे थे तो बिंदु सरोवर, तो बूंद गिरे, और ये बिंदु सरोवर अलग अलग तीर्थों के बूंद ला ला करके जो है शिव जी ने इकट्ठा किया, तो वहाँ तो भगवान के अस्त्रों के बिंदुओं से सरोवर बना, ठीक है ना। और कोई प्रश्न?
थैंक यू। आप
भगवान शिव जो है हमेशा भगवान के भजन में लगे रहते हैं
जी,
भगवान शिव जो है हमेशा भगवान के कीर्तन में लगे रहते हैं, उसके बाद उनकी बुद्धि
भगवान शिव तुम बोल रहे, अभी मैंने कहा ना भगवान शिव मत बोलो, शिव जी बोलो।
हाँ शिव जी, तो भगवान के भजन में लगे रहते हैं, उसके बाद फिर उनकी बुद्धि दूषित कैसे हो जाती है?
शिव जी
भगवान के भजन में लगे रहते हैं हमेशा,
भजन में
जी,
हाँ कृष्ण के भजन में लगे रहते हैं
जी,
तो ऐसी बुद्धि, हाँ इसमें बताया ना कि भजन करते हैं लेकिन अहंकार विशेष रूप से उनको दिया है, तमोगुण का जो है जो अहंकार है वो शिव जी को है, तो तमोगुण का जो प्रभाव है वो उनके ऊपर फिर भी आता है, ठीक है ना। फिर उन्होंने ये भी वरदान मांगा कि मुझे जो है अब ऐसी कोई बुद्धि दोबारा ना हो, ऐसा वरदान दीजिए, ठीक है। आप
हरे कृष्ण भाजी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भाजी। जैसे आप बताए थे कि अहंकार दिया, तो अहंकार जीवों के ऊपर एक शासन करने के रूप में दिया ना, वो उससे खुद प्रभावित कैसे हो जाते हैं?
शिव जी के ऊपर जो है तमोगुण का प्रभाव पड़ जाता है, हालांकि वो तमोगुण से ऊपर हैं और वे गुणातीत हैं, तो वो तो महाभागवत हैं, गुणातीत हैं, लेकिन कभी कभी जो है वो आ जाता है उनके ऊपर, उससे ये शिक्षा मिलती है शिव जी की, इस प्रकार से ये शिक्षा मिलती है कि जीव जो है कभी भी अगर अपने को स्वतंत्र समझता है भगवान से तो माया तुरंत हावी हो जाती है, ठीक है ना। जैसे मोहिनी का रूप जो है शिव जी ने कहा आप मुझे मोहिनी रूप दिखाइए, क्योंकि आपने जब दिखाया था उस समय तो मैं विष के प्रभाव से अचेत पड़ा था, तो आप मुझे अपना मोहिनी रूप दिखाइए जिससे आपने असुरों को मोहित किया। तो भगवान ने कहा कि ये जो मोहिनी रूप है मैंने असुरों को मोहित करने के लिए दिखाया था, तो शिव जी बोले तो मैं तो असुर नहीं हूँ, मैं तो मोहित नहीं होऊंगा। तो जहाँ अपना बल, हाँ शिव जी ने दिखाया कि मैं अपने बल पर आपका रूप देख लूँगा, मैं मोहित नहीं होऊंगा, तो उन्होंने भगवान ने अपनी माया से मोहित कर दिया और शिव जी जो है पीछे दौड़ने लगे मोहिनी के, है ना। तो कहीं भी अगर अपने बल पर जो है आप कोई काम करना चाहते हो तो वहीं आप जो है भगवान की माया से आप बन जाएंगे।
मुझे इसका मतलब ये है कि भगवान का शुद्ध भक्त होने पर भी जो है अहंकार आ सकता है, भगवान का शुद्ध त्रिगुण से निकलने पर, शुद्ध भक्त बनने पर भी अहंकार आ सकता है।
ये शिव जी के लिए विशेष रूप से है, ये शिव जी के लिए विशेष रूप से है। और ये जो है इसमें इसमें एक कारण ये भी है कि जीवों को शिक्षा देने के लिए भी है, कि जीवों को जो है मतलब शिक्षा देने के लिए कि भाई हमें शिक्षा लेनी चाहिए। शंकर जी तक जो है भगवान की माया से, माया के बस में हो जाते हैं, ठीक है ना। क्योंकि ये विषय इतना कठिन है, समझना बड़ा मुश्किल है, ठीक है ना। और कोई? अच्छा जी, महामाया योग माया। हाँ वैसे तो जो है महामाया और योग माया में कोई अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी ये महामाया ही कही जाएगी जो कि भगवान से दूर करती है। महामाया ज्ञान को ढकती है तो भगवान से दूर करती है, और योग माया ज्ञान को ढकती है तो भगवान के निकट लाती है। जो नंद यशोदा हैं तो वो योग माया में कृष्ण को ईश्वर नहीं मानते हैं, अपना पुत्र मानते हैं, तो कृष्ण की रक्षा करना चाहते हैं, कृष्ण की चिंता करते हैं, तो वो योग माया है, है ना। और यहाँ महामाया ये तो कुछ नहीं है, चलो फिर क्या है, क्या चिंता है, करो अपनी मर्जी से जो कुछ, तो महामाया है ना।
शिवजी पे कृपा करना चाहते थे भगवान, और उनको अपने पूरी पूरी जो धाम है उसमें स्थान देना चाहते थे, तो इस दृष्टि से तो वो एक लीला लीला रची गई थी ऐसे सोचो।
नहीं, यहाँ पर भगवान ने ये दिखाया कि जो है जब आप अपराध करें, गलती करें, तो आपको जो है कैसे भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान से शरण लेनी चाहिए भगवान की। तो शरणागति की जो विधि है ये, क्योंकि हम जीव हैं, अपराध करते हैं, लेकिन हमें हमेशा ऐसी प्रार्थनाओं का अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि भगवान जो है ऐसी प्रार्थनाओं से प्रसन्न होते हैं। तो कैसे हमें प्रार्थना करनी है ये शिक्षा भी मिलती है शिव जी के द्वारा, ठीक है। और आप
तो जी, यहाँ पे शिव जी जो प्रार्थना कर रहे हैं उसमें चाह रहे हैं कि जो धाम में उनको वास मिले और वहाँ पे सेवा करके वो अहंकार से बचे रहे, तो ये इसको किस प्रकार से समझे कि धाम में वास और सेवा से अहंकार से जो शिव जी बचे।
धाम में वास और
वहाँ पे सेवा, मीनियल सेवा जो करेंगे तो निम्न सेवा करेंगे उससे अहंकार से बचे रहेंगे, मीनियल सेवा
आप बता सकते हैं। इस प्रकार से कैसे अहंकार से बचने के लिए यही जरूरी है कि हम जो है भगवान के चरणों में रहें, और ये हमारे स्वामी हैं और मैं इनका दास हूँ, है ना। और अगर जो है ना अपने से हम देखते हैं कि भाई ये सब लोग जो है मेरे नीचे हैं और मैं इन लोगों के ऊपर हूँ, तो अहंकार आएगा। तो शिव जी क्या चाहते हैं कि भगवान के चरणों के निकट रहें इस चेतना में कि मेरे स्वामी हैं, मैं इनका दास हूँ, तो इसमें अहंकार से बचे रहेंगे। तो ये जरूरी है ना, अगर आपको जो है हमेशा ये मिलता है कि भाई आपके सब अंडर हैं और मैं सब इनके ऊपर हूँ और मेरा जो है कंट्रोल हो रहा है, तो इसमें अहंकार आएगा ही, है ना। तो शिव जी को जो है वो पद मिला ही है, तो भगवान के चरणों में रहना चाहते हैं कि वो हमेशा सेवा में रहें, नीच सेवा। तो भगवान ने जब कहा कि आप रक्षा करो, तो रक्षक के रूप में, तो रक्षक के रूप में ये चेतना रहेगी ना कि मैं इनका क्या हूँ, चौकीदार, ठीक है ना। तो शिव जी को जो है भगवान ने चौकीदार का काम दे दिया कि चौकीदारी करो, है ना। तो ये इससे जो है वो मतलब अहंकार नहीं आएगा ना कि मैं किसका चौकीदार हूँ, कृष्ण का, है ना, ठीक है ना। और कोई? अच्छा हाँ, आप बोलो। भगवान भगवान जो है हृदय में बैठे हुए हैं, कुबुद्धि भी देते हैं भगवान, लेकिन बात यही है कि जीव अगर चाहता है तो भगवान देते हैं। सुबुद्धि कुबुद्धि दोनों भगवान से तो आता ही है। भगवान कहते हैं सर्वस्याहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम् अपोहनम् च। इसलिए अगर आप भक्ति मांगते हैं भगवान से, तब आपको भक्ति देंगे? मतलब भक्ति भगवान छिपा के रखते हैं, भक्ति नहीं देते हैं। और आप भगवान को भूलना चाहते हैं तो भगवान की माया तो है ही है, भ्राम्यं सर्वभूतानि अंतरारूढ़ानि माया। और जितनी को बुद्धि है सब भगवान की माया दे रही हो, हृदय में भगवान है ना, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से, हृदय में भगवान बैठे अपनी माया से कुबुद्धि दे रहे हैं। और जीव जो है उसको बुद्धि में जो है माया में जो है सब तरह के गलत काम कर रहा है और कष्ट भी भोग रहा है, नरक में भी जा रहा है, है ना। हाँ, इसलिए हमें जो है हमेशा ये हमारे हमें हमारा ये काम है कि हमेशा हम प्रार्थना में लगे रहें कि मुझे जो है हमेशा अपनी सेवा में लगाओ, हरे कृष्णा, ये नहीं है कि बस मैं तो बड़ा, मुझे तो बड़ी सेवा मिल गई, मैं तो बड़ा भक्त बन गया, जहाँ आपने सोचा तो गए, आप समझे। तो हमेशा इस भावना से रहो कि मैं जो है भक्त नहीं हूँ, अपने को भक्त ना समझो, हैं, मुझे भक्ति दीजिए, मुझे सेवा दीजिए, हमेशा आपका ये फर्ज है, ठीक है ना। आपका प्रश्न, अच्छा प्रश्न है उनका। शिव जी जो है परम वैष्णव हैं, तो ये जो है शिव जी की स्थिति पूरी सृष्टि में, जो भौतिक सृष्टि है उसमें आप कह सकते हैं कि शिव जी जो है बहुत ऊंचे धरातल पर हैं भक्ति के। जहाँ तक ब्रज की गोपियों की बात है तो वो तो जो है मतलब बहुत ऊपर हैं, ये तो भगवान के धाम की गोपियाँ हैं, ये माधुर्य भाव तो बहुत ऊपर है, है ना। तो शिव जी तो शांत भाव में हैं या दास्य भाव में, दास्य भाव से ऊपर क्या है सख्य भाव, तो वो तो उनसे भी ऊपर है, और सख्य भाव से भी ऊपर वात्सल्य भाव और ऊपर है, वात्सल्य भाव से ऊपर माधुर्य भाव बहुत ऊपर है, ठीक है ना। धन्यवाद। ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत की जय। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधिका रमण भगवान की जय। श्री श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव की जय। श्री श्री गौरताई भगवान की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम भगवान की जय।